सिविल सेवा की तैयारी करने वाले मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि मुख्य विषय के रूप में मैं आज किस विषय पर बात करने जा रहा हूं। तो जब आपको पता ही लग गया होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बता भी नहीं रहा हूं। तो इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक खबर जो दो दिन पुरानी है और दुर्भाग्य से इसे अखबारों में बहुत ज्यादा जगह भी नहीं मिली है, वह है लाचित बोर्ड फूकन से जुड़ी हुई खबर। ये नाम आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा ना कि ये लाचित बोर्ड फूकन क्या है। मैंने कहा कि अखबारों में जगह नहीं मिली, लेकिन परसों रात की जो न्यूज थी उस न्यूज में इनका नाम था और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, भले ही अखबारों में वैसी जगह न मिली हो। वैसे जो दैनिक हिंदुस्तान होता है उसमें मुझे देखने को मिला कि लाचित बोर्डफूकन को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐड, लगभग आधे पेज का ऐड या पौन पेज हो सकता है, दिया हुआ है। दिल्ली में बकायदे इनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है विज्ञान भवन में 23 से 25 नवंबर तक, और कल जिसका समापन समारोह होगा उसमें प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे। सोच करके देखिए कि अगर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी भाग ले रहे हैं तो डेफिनेटली कोई बहुत ही महत्वपूर्ण नाम होगा। अब मुझे बता ही देना चाहिए कि लाचित बोर्डफूकन कौन है। दोस्तों, जो लाचित बोर्डफूकन है बेसिकली वो असम के बहुत ही महान सेनापति रहे, जनरल रहे, आर्मी के जनरल रहे हैं। किसके आर्मी के जनरल रहे हैं? असम के जो स्टूडेंट हैं, असम के जो लोग हैं, वो जानते होंगे असम के इतिहास के बारे में। वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी रही है, वंश रहा है, साम्राज्य रहा है, जिसे अहोम साम्राज्य कहा जाता है। अहोम साम्राज्य, तो अहोम साम्राज्य के ये सेनापति रहे, जैसे गुप्त साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, उसी तरह से अहोम साम्राज्य के ये सेनापति रहे हैं। अहोम साम्राज्य के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। इनका जो पीरियड रहा है वो रहा है 1228 से 1826 तक। 1228 में इसकी जो स्थापना की है वो है सुकम्पो, उन्होंने इसकी स्थापना की है SUKAPHOO, सुकम्फू ही होगा उच्चारण, देख लीजिएगा। इन्होंने इसकी स्थापना की, ऑलमोस्ट 600 वर्षों तक का इनका शासन रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो मुगल अटैक हो रहे थे मध्यकाल में, देखिए 1228 से मध्यकाल आ जाता है, शुरू हो गया, और 1826 तक इन्होंने शासन किया है। मतलब जो मुगल जो अटैक रहे लगातार उनको ये विफल करते रहे, और बाद में फिर जब ब्रिटिश सत्ता आई तो बर्मा के द्वारा आक्रमण किया गया, और फिर 1826 में एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के द्वारा इसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। उस ट्रीटी का नाम है वाइनडबो। अब ये जो लाचित बोर्डफूकन है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा इन्हें जो प्रसिद्धि मिली है वो है 1671 में एक युद्ध हुआ था, सराई घाट का युद्ध। इस सराई घाट के युद्ध में इन्होंने मुगल सेना के प्रयासों को विफल किया था और इसकी वजह से इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक वर्ष के बाद ही उनका निधन हो गया। इनका जो पीरियड रहा है लाचित बोर्डफूकन का, वो इनका जो बर्थ ईयर है वो है 1622, और जो इनकी डेथ हुई है वो है 1672, यानी कि 50 साल तक ही ये जीवित रह पाए। चूंकि इनके नाम पर इतना बड़ा समारोह हो रहा है तो डेफिनेटली इनके बारे में आपको जानना चाहिए, और चूंकि रेडियो न्यूज में ये खबर थी भी तो इसलिए भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अहोम साम्राज्य के बारे में विशेष रूप से आप सबको थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना चाहिए। रिटेन में भले ही न पूछा जाए, लेकिन मान करके चलिए कि अगर आप इंटरव्यू में पहुंच गए तो डेफिनेटली इस पर पूछा जा सकता है। दोस्तों, जो दो छोटी छोटी और खबरें हैं, पहले मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। एक तो जम्मू और कश्मीर के जो नगर निगम है उसने एक प्रस्ताव पारित किया है, यूं कह लीजिए कि वो नियम ही बन जाएगा, और वो ये कि जो नगर निगम के जो मेयर होते हैं उनका ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो स्नातक होगा, जो ग्रेजुएट हो गया, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कह लीजिए, वही मेयर बन सकेगा। जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो चूंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है, शहरी निकाय की बात है, तो इतनी जानकारी मुझे लगा कि आपके पास होनी चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, ये मामला थोड़ा सा विवादास्पद तो था, लेकिन बाद में फिर से पर्याप्त रूप से अब अखबारों में जगह मिलनी शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब इस पर एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे, हो सकता है कि आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने को मिले। और वो ये है कि अब केंद्र सरकार ने कुछ इस तरह की बात रखी है, ये सूत्रों के मुताबिक है, कि जो राज्यपाल हैं उन्हें गांव के दौरे करने चाहिए और साल भर में कम से कम 100 गांव या स्थानों का दौरा तो करना ही चाहिए। सुनने में आपको बहुत छोटी सी बात लग रही है, दरअसल हुआ कि हमारे जो इससे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी, जो राज्यपालों के सम्मेलन होते हैं हर साल उसमें उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि हमारे जो राज्यपाल हैं वो ब्रिटिश काल के परिपाटी को खत्म करें, उन्होंने कहा लाट साहब कल्चर को खत्म करें और उन्हें लोगों के बीच जाना चाहिए। अब एक घटना इसके बारे में बहुत अखबारों में आ रही है, एक स्टेट के राज्यपाल को लेकर के कहना चाहिए, घटना शब्द ठीक नहीं होगा, और वो ये कि गोवा के जो राज्यपाल हैं P.S. श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने पिछले 15 महीनों में राज्य के लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, और अगर उन्होंने 40 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लिया तो ये कह लीजिए कि वहां 40 ही विधानसभा के क्षेत्र हैं, और इस दौरान लगभग वे 100 ग्राम पंचायतों में भी गए, वहां जाकर वहां के सांसद हैं, उस क्षेत्र के जो विधायक हैं और जो सरपंच हैं और जो लोग हैं उनके साथ बातचीत की। अब इसमें दो पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि राज्यपाल क्यों जाएं? तो अगर कानूनी दृष्टि से देखें, बिल्कुल उसे तो कोई ना कोई वैधानिक आधार ही देना पड़ेगा, तो वैधानिक आधार इसका यह हो सकता है कि चूंकि राज्यपालों के सिग्नेचर के बाद ही, आपको मालूम है कि विधानमंडलों द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं वो कानून बनते हैं, अगर राज्यपाल हस्ताक्षर न करें तो वो कानून नहीं बनेगा, और राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि अगर वो हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें, राष्ट्रपति उसे कितने भी दिन अपने पास रख सकते हैं। इसका मतलब है कि राज्यपाल अंतिम रूप से इसकी अनुमति देते हैं कि नई विधानसभा से जो पारित किया गया विधानमंडलों से ये कानून बन जाना चाहिए। तब राज्यपाल कैसे ये इस बात का निर्धारण करें कि ये कानून बन जाना चाहिए, कैसे इस बात का निर्धारण करें, उनके पास निर्धारण करने का आधार क्या है? क्योंकि अभी तक जैसे कि सत्यपाल मलिक जी जो पहले जम्मू कश्मीर में रहे हुए हैं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि हमारे जो अभी के जो राज्यपाल हैं उनका तो केवल एक ही काम रह गया है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिला दें, और इसके बाद अगर कभी राज्य में राजनीतिक उठापटक मची तो उसमें फिर वो सक्रिय होते हैं, अदरवाइज बस थोड़े बहुत उद्घाटन कर दिए और राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। और आप इस अभी तो ये बातें नहीं चल रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले ये विवाद में बात आई थी कि राज्यपालों के पद को समाप्त ही क्यों नहीं कर देना चाहिए, इनकी जरूरत अब नहीं रह गई, सरकार का इतना अधिक खर्च होता है। तो ऐसी स्थिति में कि अगर उनका काम सिर्फ मुख्य न्यायाधीश या जो राज्य के जो हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं उनको अगर शपथ दिलाना है और केवल उद्घाटन करने हैं तो वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। तो उस आधार पर चूंकि उन्हें विधानमंडलों द्वारा पारित कानून पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने होते हैं तो उन्हें यह जानना ही चाहिए कि भाई उस राज्य को उस कानून की जरूरत है या नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस रूप में ये कानून उनके सामने आया है पारित होकर के विधानसभा से, तो वो लोगों की उन इच्छाओं को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो विल ऑफ द पीपल तो उनको मालूम हो, तो लोगों की इच्छाओं को वो कैसे जान सकेंगे? तब तक नहीं जान सकेंगे जब तक कि वे लोगों के बीच में जाएंगे नहीं। तो उसको आधार अगर बना करके हम बात करें तो सीधी सी बात है कि उन्हें जाना चाहिए, दौरे पर जाना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, वो ये है कि देखिए राज्यपाल का जो पद है वो एक दूसरे कारण से बहुत ज्यादा विवाद में रहा है, और इसको लेकर के मेंस में क्वेश्चंस भी जनरली पूछ लिए जाते हैं। राज्यपाल के पद को हमारी जो संघीय व्यवस्था है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर आघात पहुंचाने वाली व्यवस्था मानी गई है, क्योंकि जो राज्यपाल है ये कहा जाता है कि वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, और यदि केंद्र में किसी पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो राज्यपाल उनके लिए जो वहां मुख्यमंत्री हैं या वहां की जो सरकार है उनके लिए लगातार परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। और इमरजेंसी के पीरियड वगैरह में तो बहुत अच्छे राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका नहीं देखी गई है। अब तक का जो इतिहास रहा है कि वो जनरली केंद्र के इशारों पर काम करते हैं, ये विवादों में आता है, बहस में भी ये बात आती है। इसका मतलब है कि राज्यपाल निष्क्रिय से ही रहें, अगर वो हैं तो निष्क्रिय से ही रहें, लेकिन अगर वो गांव का दौरा करने लगे, सांसद विधायकों से सीधे बात करने लगे, तो सीधी सी बात है कि जो सरकार है उस सरकार के लिए एक संकट की स्थिति थोड़ी सी आ सकती है। आप देखिए कि किस तरह से केरल में बकायदे राज्यपाल चूंकि सक्रिय है तो वहां जो वाइस चांसलर्स वगैरह की जो पोस्टिंग होती है उसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है, ये आप पढ़ रहे होंगे। तो जहां भी राज्यपाल थोड़े से सक्रिय हो जाते हैं वहां फिर इस तरह के विवाद की स्थितियां बन जाती हैं। गोवा में जब किरण बेदी जी राज्यपाल थी उस समय भी इस तरह के विवाद की स्थिति आई थी, क्योंकि किरण बेदी जी थोड़ी सी एक्टिव हो गई थी। तो आप इसे राज्यपाल की सक्रियता भी कह सकते हैं, एक्टिविज्म ऑफ गवर्नर्स कह सकते हैं। तो वहां फिर एक दूसरे किस्म के संकट के उत्पन्न हो जाने की आशंका है इसको लेकर के। तो दोस्तों ये दो पक्ष मैंने आपके सामने रखे हैं, और चूंकि राज्यपाल का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जामिनेशन में इसको लेकर के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो प्लीज इस पर आप ठीक ठाक तैयारी कर लें। मुझे उम्मीद है कि शायद इस पर एडिटोरियल कमेंट्स और एडिटोरियल आर्टिकल्स आएंगे, जब ऐसा होगा तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। फ्रेंड्स, तो अभी जिस पर मैंने बात की है आप इसे ही आज का मुख्य विषय मान लें, हालांकि आज का मेरा मुख्य विषय कुछ दूसरा था, उस विषय पर हम लोग कल बातें करेंगे। और मैं जब कह रहा हूं कि कुछ दूसरा था तो आपने बिल्कुल सही अनुमान लगा लिया होगा कि वह दूसरा क्या था। तो दोस्तों बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं नीरज वर्मा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, अजय कुमार वर्मा और बलराम कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।